ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ரத்த கொணவா சரீரம் சாரதி புத்திய மன பிரகாஹே பிரகிரஹே ஆர் கோடே சன்னைக்கு விஷயாஸ் தேசு கோச்சரான். इंद्र का विषय है मार्ग रास्ता है, घोड़े उधर दौड़ते हैं मार्ग उधर भागते विषय में, और मन प्रग्रह के द्वारा बुद्धि सारथी उसको नियमन करता है, और कर्म फल भोगने वाले आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम जो भोगता है, केवल शुद्ध आत्मा भोगता नहीं होता है, इंद्रिय मन शरीर शरीर इंद्रिय मन से युक्त होकर के आत्मा का तो शरीर इंद्रिय मन से युक्त होकर के आत्मा को भोक्ता कहते हैं संसारी, जो संसारी आत्मा है शरीर इंद्र मन से युक्त होकर कर्म फल भोग करता है, शुद्ध आत्मा नहीं, सोपाधि का आत्मा ही भोक्ता करता होता है, शुद्ध आत्मा नहीं, केवल शुद्ध आत्मा में ना तो भोक्तृत्व है ना तो कर्तृत्व है। एक श्रुति में ध्यायति व लीलायति व, ध्यान करता जैसे चलता जैसे, जिस प्रकार जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, जल स्थिर है तो प्रतिबिंब स्थिर हो गया, जल को हिलाने पर प्रतिमा में कंपन दिखता है, इसी प्रकार आप सो शरीर घड़ा है, इसमें जल के स्थान पर क्या है मन बुद्धि अंतकरण है, बुद्ध्याम ध्यायंत्याम, बुद्धि स्थिर हो गई तो आत्मा का प्रतिबिंब स्थिर हो गया, बुद्धि में चंचल होने पर चलंत्याम चलती व, आत्मा चलता जैसे स्थिर हो जाता, जैसे आत्मा में स्थिर होना चलना चलना गति कंपन उसका रोक देना तो स्थिर हो जाना, स्था धातु कहते तिष्ठति, स्था का तो धातु का तो गति निवृत्त हो, गति है तो गति की निवृत्ति होगी, गति नहीं तो गति निवृत्ति क्या, स्थिर है मतलब गति नहीं है गति निवृत्ति होगी, तो आत्मा बुद्धि में चलना स्थिर होना बुद्धि में है, आत्मा में चलता जैसे स्थिर होता जैसे, ध्यायती व बुद्ध्याम ध्यायंत्याम, बुद्धि ध्यान करते समय आत्मा ध्यान करता जैसे स्थिर हो गया जैसे, बुद्धि में चंचल चांचल्य हुआ तो आत्मा में चांचल्य जैसे हुआ, ऐसा कौन से क्या हुआ, आत्मा में स्वतः चलना नहीं और चलन की निवृत्ति भी नहीं, चलन हो तो चलन की निवृत्ति होगी, गति हो तो गति की निवृत्ति होगी, स्वतः निश्चल आत्म तत्व कर्तृत्व भूतत्व आदि कोई धर्म नहीं है, तभी आत्मतत्व जो परम पद को प्राप्त कर सकता है, यदि वास्तव आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, अग्नि में उष्ण स्पर्श वास्तव है उसकी निवृत्ति कोई नहीं कर सकता है, सूर्य में उष्ण स्पर्श है निवृत्त नहीं होगी, अग्नि को बुझा दो अलग बात है, अग्नि है और गर्मी नहीं लगे नहीं हो सकता है, आत्मा स्वभाव में यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार सुख दुख जन्म मरण आदि वास्तव मानेंगे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से निवृत्ति होती, इसका अर्थ वास्तव आत्मा में सुख दुख संसार जन्म मरण है ही नहीं। अब ये रथ तो मिल गया, रथ चलाने के लिए कैसे चाहिए सारथी ठीक होना चाहिए, सारथी बुद्धि ठीक नहीं तो क्या होगा रथ की गति, यस्त विज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे, जैसे सारथी है उसके दुष्ट अश्व घोड़े सब दुष्ट है दोष युक्त, घोड़े को रथ में लगाने के पहले शिक्षा देते हैं, बैल को घोड़े को रथ को बांधने पहले उनको पहले शिक्षा देते हैं, शिक्षा करके दमन करके ठीक करने के बाद नहीं तो कहां लेकर दौड़कर भगाएंगे, सारथी के यदि अभिज्ञानवान भवती, सारथी को ज्ञान नहीं है किस प्रकार वो घोड़े को चलाने के लिए, घोड़े लगाम को कब पकड़ना खींचना कभी छोड़ना ये भी मालूम होना चाहिए, घोड़े पर बढ़ जाए और लगाम को जोर से खींचो दौड़ेगा, जोर से खींचने से दौड़ता है ना, हाँ और छोड़ दे दो, हाँ तो जब रुकने की इच्छा उसको जोर से खींचो तो रुकने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक लगाते ना, रुको जोर से खींचो रुक जाएगा, जोर से खींचो तो क्या होगा दौड़ेगा, आपकी इच्छा उसको रुकने के लिए, रुकते निकलने के खींचने से रुकता है क्या, खींचने से दौड़ता है, तो ये मालूम होना चाहिए, गाड़ी चलाने के भी कहाँ दबाना है कहाँ दबाने से रुकेगा, जहां एक्सीलेटर को दबा दे रुकने के लिए ब्रेक को नहीं दबा करके जोर से चलेगा, इसलिए जो अभिज्ञान वाला भवति सारथी, विज्ञान वाला सारथी नहीं, और अयुक्त न मनसा, युक्त मन उसका पकड़ कर रखना चाहिए लगाम, बुद्धि से मन को रखना है, मनस ईशा मनीषा बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा मन का शासन होता है, मन बुद्धि के अधीन है, तो उसको नहीं रोक पाया तो तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगे। बुद्धि यदि विज्ञानवान सारथी है तो यह का तो जो सारथी अभिज्ञानवान, उसके बुद्धि नहीं अपने अधीन नहीं, बुद्धि मन को रोक नहीं सकती है, इंद्रिय दौड़ेंगे, अवश्यानि दुष्टा स्वा इव सारथे, सारथी के दुष्ट अश्व जैसे दौड़ करके लेकर कहां से गिरा देंगे, इसे उनका दमन करके मन से प्रग्र स्थाने मन से उनको रखना है बुद्धि के द्वारा। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदा स्वाइव सारथे, इंद्रिय वश में किसका होगा, जो सारथी विज्ञानवान, सारथी को ज्ञान है, जो मन को रोकने का कब लगाम को पकड़ना छोड़ना मालूम हो, युक्त न मन सा लगाम को पकड़ना पड़ता है, मन को अपने अधीन रखे, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, ऐसे सारथी विज्ञान वाला बुद्धि है तो इंद्रिय अपने वश में, इंद्रिय वश में हो तो जहां चाहेगा रथ लेगा, इसे सदस्व एव सारथे, सारथी के जो सदस्व दमन किए गए अश्व इस अपने अधीन में जहां चाहेंगे ले सकता है, रोक सकता है, तभी इसी रथ को चला सकता है। यस्तु अभिज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचि न स तत्पदम आपनोति संसार अंचादि गच्छति, यस्तु अभिज्ञानवान भवति, रथ वाला विज्ञान वाला नहीं सारथी नहीं, अमनस्क मन को ठीक नहीं पकड़ा लगवा, मन उसके अधीन नहीं, बुद्धि ठीक है तो मन को असंयम करें, बुद्धि यदि नहीं ठीक तो मन को नहीं रख सका, सदा अशुचि सदा अपवित्र है, ये जो रथ वाला यदि बुद्धि शुद्ध नहीं, मन को ठीक नहीं करके इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा, अत्यंत अपवित्र है, न सत पद पदम आपनोति, ऐसे रथ वाले जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, संसारम चाधिगचित, और कहां प्राप्त करेगा, कहां जाएगा, संसार को प्राप्त करेगा, संसार शब्द सम्यक शरणम संसारम, श्री गत्यर्थ के गमन सम्यक गमन, गमन क्या है, सम्यक जन्म मरण जरा व्याधि इसको प्राप्त करना, जन्म मरण का नाम लेते जरा व्याधि उसके अंदर ये संसार दुख सबको प्राप्त करेगा। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते, जो रथि विज्ञानवान है सारथी उसके युक्त है, रथ वाले रथि विद्वान उसकी बुद्धि स्वरूप सारथी ठीक नियंत्रित है, मन को नियमन करती, समनस्क मन को पकड़ कर रखा है, वो सदा शुचि ही हमेशा पवित्र है, मन को नियमन करने बुद्धि के द्वारा, मन नियमित है तो इंद्रिय को, नहीं तो क्या होता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मन अनुविध्यते तद सहरति प्रज्ञान, इंद्रिय तो भागती है, इंद्रिय जब भागती है केवल नहीं मन को खींच लेती है, मन उसके पीछे भागा, मन जब जाएगा क्या करता है, तद सहरति प्रज्ञान बुद्धि को भी लेकर चल जाता है, तो आगे क्या साधन करेगा, बुद्धि ठीक है मन को नियंत्रित करे तो इंद्रिय को रुकेगा, तब समनस्क है सदा पवित्र है वही पद को प्राप्त करता है, सतत पदम आपनोति, परम पद को जो प्राप्त करता हो यस्मात् भूयो न जायते, जिस पद को प्राप्त करने पर फिर जन्म नहीं लेता, संसार को नहीं आता है। विज्ञान सारथि यस्तु मन प्रग्रह वा नर शोधन परम आपनोति तद विष्णु परमं पदम, सारथि विज्ञान बुद्धि सारथि भी है जिसके मन प्रग्रह वाला ऐसा जो है नर मनुष्य है, जो नर मनुष्य जीव का सारथी विज्ञान सारथी बुद्धि विज्ञान वाले सारथी है, विवेक बुद्धि सारथी जिसका है, मन प्रगाह जिसका है, ऐसा जीव सो अध्वन परमाप्नोति, संसार मार्ग है गति उसके परम पद को परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है, संसार के पार को प्राप्त करता है, जो कि विष्णु हो परम पदम, विष्णु है ब्रह्म है व्यापक, विष्णु चतुर्भुज नारायण विष्णु के रूप है धारण करके प्रकट होते हैं, किंतु विष्णु शब्द का अर्थ वेवेश चराचरमिति विष्णु, विष्णु व्याप्त धातु से बनता है, चर अचर समय व्याप्त होने वाले क्या नाम विष्णु, वेवेष्टि चराचरम, विष्णु व्याप्त धातु है, वेवेष्टि का अर्थ व्याप्त करता है, व्याप्त हो जाता है। कहाँ? चर अचर, चर चलने वाले जंगम, अचर स्थिर रहने वाले, सबके अंदर बाहर व्याप्त होने वाले विष्णु, उनका परमम पदम। परम पद का थे विष्णु चतुर्भुज, उनके पाद को प्राप्त करके ऐसा लोक में सामान्य कहते। वस्तु तो व्यापक परमात्मा का पद का तो पाद नहीं, पद्यति गमेति पादम स्थान, परमात्मा का स्थान क्या? वास्तव स्वरूप, परब्रह्म के वास्तव स्वरूप प्राप्त करता है। सयो हवि तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवती, ब्रह्म को प्राप्त करने का तो ब्रह्म रूप हो जाना। अभी जो पद को प्राप्त करना है परम पद विष्णु पद व्यापक आत्म तत्व, अभी उसको निश्चय करने के लिए जानने के लिए वो परम पद कहाँ है? वैकुंठ में प्राप्त करना ये नहीं, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसको प्राप्त करने का अर्थ अज्ञानी की निवृत्ति मात्र ब्रह्म में होता है। अभी उसका निर्णय करने के लिए देह के अंदर ही प्रत्येक आत्मा रूप से उसको जानना, पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता अहम अस्मि ब्रह्म, इदं त्वेन असो वह ऐसा नहीं, वह स ऐसा नहीं, वह स ऐसा ज्ञान होता तो वेद ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं। ब्रह्म शब्द का तो अपरिचिन्न, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सब देश में है, सब काल में सब वस्तु है, कोई भी देश नहीं जहां ब्रह्म नहीं हो, किसी काल में ब्रह्म का अभाव नहीं होता है, कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यदि कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न है तो आप ब्रह्म से भिन्न है, आप यदि ब्रह्म से भिन्न है तो ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा, वस्तु परिच्छिन्न नहीं। इसलिए जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा अहम अस्मि असो उत्तद नहीं है, इसलिए उसके प्रत्येगात्म रूप से साक्षात्कार करना, इसलिए श्रुति आगे कहती इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान परः। इसके विषय में ब्रह्मसूत्र माता आध्यान आय प्रयोजन भावार्थ, इंद्र से अर्थ पर, अर्थ से मन पर, मन से बुद्धि पर, ये जो पर कहा गया इतने सब को जान करके क्या प्रयोजन है? इसलिए कहा आध्यान आय प्रयोजन भावार्थ, ये ज्ञान ध्यान करके उसको ज्ञान पर ब्रह्म को प्राप्त जानने के लिए, ध्यान करके सूक्ष्म पर ब्रह्म को जानने के लिए पर का किससे कौन पर किससे कर पर न, इसे जानने से कुछ नहीं, समझ करके सबसे जो परम सूक्ष्म है पर ब्रह्म उसको समझ करके ध्यान करके ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा। इंद्रिय स्थूल विषय को ग्रहण करते हैं, इंद्रिय से पर हो गया अर्थ विषय, क्योंकि इंद्रिय की उत्पत्ति भूत से होती है, अपंचीकृत भूत का कार्य भूत हो गया विषय, जिन विषय से इंद्रिय की उत्पत्ति हुई कारण हो गया भूत, इंद्रिय हो गया कार्य, कार्य से कारण पर होता है, इसलिए इंद्रिय से पर हो गया अर्थ, अर्थ से ही विषय से अपंचीकृत भूत से बना, और इसलिए इंद्रिय से कार्य से कारण सूक्ष्म हो गया पर हो गया, अर्थ से पर मन, उससे पर मन, मन भी सूक्ष्म भूत से उत्पन्न होता है, मन से भी पर बुद्धि, जो बुद्धिमान को नियमन करने वाले, बुद्धि से पर है महान है महान आत्मा, महान आत्मा है हिरण समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि पर है व्यष्टि बुद्धि से, महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठासा परागति, महत जो हिरण्य गर्भ उससे सूक्ष्मतर है परम अव्यक्तम माया तत्व आत्मा अव्यक्तम, अव्यक्त में उसमें कोई कार्य व्यक्त नहीं, कारण रूपे जगत का बीज, जैसे सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान सारा जागृत स्वप्न प्रपंच के बीज रूपे अव्यक्त है माया तत्व, और वो अव्यक्तात् पुरुष पर, अव्यक्त से पर है परम पुरुष शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान, शुद्ध ब्रह्म से पर कौन होगा? उससे पर कहते, तो इसलिए श्रुति कहते पुरुषा न परम किंचित, जो अव्यक्त का अधिष्ठान माया तत्व का अधिष्ठान आश्रय ब्रह्म, उससे परम किंचित नास्ति कोई पर नहीं, सा काष्ठा सारे काष्ठा का निष्ठा सब उत्कर्ष की ही अंतिम समाप्ति है परिवर्तन, उससे बढ़कर और कोई नहीं है, सा परागति हुई परम गति है, जो माया का आश्रय ब्रह्म है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम कहा गया। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रे अबुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शिभिः, एष आत्मा सर्वेषु भूतेषु, जिस आत्मा के ज्ञान, जिस आत्मा की प्राप्ति ज्ञान से, जो आत्मे के ज्ञान से मुख्य वो आत्मा सर्वेशु भूतेषु गूढ़, स्पष्ट है यही आत्मा है सर्वेशु भूतेषु गूढ़, सारे भूत में स्थित आत्म रूप से अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित भगवान कहते हैं। सारे भूत में मैं आत्मा रूप से स्थित हूं, ये आत्मा सर्वेशु भूतेषु गूढ़, गूढ़ छिपा हुआ बुद्धि में स्थित है, न प्रकाशते, बाह्य विषय चिंतन करने से इससे प्रकाशित नहीं होता है। तो उसका प्रकाश कैसे होगा, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, अग्र बुद्धि अग्रिम अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, ये ध्यान करते इसलिए बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए एकाग्र करने के लिए मन बुद्धि से चिंतन होता है, विषयों का हमेशा चिंतन चलता है, और बहुत ही चिंतन इधर 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 उधर सब भागता फिरता है, जितने अधिक चिंतन करता है इतने मन में शक्ति क्षीण होती है, चिंतन कम करके एकाग्र करने से शक्ति बढ़ती है। उसमें दृष्टांत में बताया था, अभी ठंडी के समय ऋषि के साथ में धूप में दिन भर धूप में बैठते हैं, लेटते हैं, धूप में बड़ा अच्छा लगता है ठंडी होने से, अभी यहां अच्छा नहीं लगे तो भी धूप में खड़े हुए चलते चलते धूप में एक घंटा कहीं रह जाओ तो सहन हो जाता है, नहीं होता है, हो जाता है, गर्म ले लेते हैं, एक घंटा तक सारा शरीर में सूर्य किरण पड़ता है तो कोई आपत्ति नहीं, जहां ठंडी हो तो दिन भर रहते हैं, तो अभी भी जो रास्ता में है चलने वाले ठेली चलाने कहीं बैठा है खड़ा है चलते हैं तो भी सहन कर लेते हैं, किन्तु इतने जो चश्मा कांच है बीच वाला मोटा रहता है उसी चश्मा कांच में इतने सूर्य किरण को एक बिंदु में कर दो, इतने रखने से एक बिंदु में आ जाने से क्या हो जाता है, अग्नि प्रकट हो जाती, अग्नि इतने सूर्य किरण को एक बिंदु में रखने से सामर्थ्य अग्नि को प्रकट करने के लिए, जिस प्रकार सारे शरीर में सूर्य किरण होने पर कुछ नहीं हुआ, इतने सूर्य किरण एक बिंदु में आ जाने से वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार समझो मन ब्रह्मांड घूमता है, मन को एक बिंदु में लगा दो पर ब्रह्म वहां प्रकट हो जाते हैं, इतने मन को लगा करके एक ही बिंदु में लगाता रखो पर ब्रह्म जैसे अग्नि वहां ए प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार पर ब्रह्म सर्वत्र है, वहां मन को स्थिर कर लगा दो पर ब्रह्म प्रकट होते हैं। मन को एकाग्र करना अग्रया एकदम अग्रिम तीक्ष्ण करना है, अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म भी होनी चाहिए, स्थूल पदार्थ देखने में तो इंद्रिया बड़े प्रबल है, मन से सूक्ष्म वस्तु का चिंतन सूक्ष्म का समझना, विचार करेंगे तो होता है, विचार नहीं करने पर घड़ा में जल जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, कहते घड़ा में आकाश देखो प्रतिबिंब का आकाश समझता है, और विचार करें तो आकाश का है वो प्रतिबिंब है, और जल में घड़ा में जल भर गया तो जल में वास्तव आकाश है या प्रतिबिंब है, वास्तव आकाश जल भरने के बाद वास्तव आकाश रहेगा न निकल जाएगा, रहता है इसको समझना, घड़ा में जल भरने पर ही वास्तव आकाश रहता है। इसी प्रकार ये चिदाभास सबके शरीर में दिखता है, सबके शरीर में चिदाभास है, जो कि दीवार में पत्थर में नहीं है, सामान्य चेतन दीवार में है, और आपके शरीर में चिदाभास है किंतु सामान्य चेतना है, आपके शरीर में या दीवार में है, दोनों में सामान्य चेतन है, वो हमको नहीं दिखता है, इसलिए उसको हम दीवाल को जड़ कहते हैं, इसको चेतन कहते हैं, सामान्य चेतना सर्वत्र होने पर भी उसको नहीं देख पाते हैं, दिखता है चिदाभास, ये विवेचन करना है, प्रतिबिंब चिदाभास सर्वत्र दिखता है, बिंब रूप चेतन एक है, और बिंब एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब एक समय में हो सकता है, अनेक दर्पण में एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब हो सकता है, अनेक दर्पण में अनेक जल में चंद्र का प्रतिबिंब अनेक हो जाते हैं, प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है, जल है या घड़ा है, प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब है, प्रतिबिंब कितने हैं, हजार घड़े में हजार प्रतिबिंब, बिंब कितने हैं, हजार प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप कितने है, हजार प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक हो सकता है, हजारे घड़े में जीवों का वास्तव स्वरूप एक ब्रह्म है, हजार जीवों का वास्तव स्वरूप हजार ब्रह्म नहीं एक ब्रह्म है, हो सकता है क्या, हाँ उसी बिंब को जो वास्तव स्वरूप आपका है एक ही है, उसी का प्रतिबिंब सर्वत्र दिखता है, जो कहते अपना स्वरूप सर्वत्र देखो, अपना प्रतिबिंब को सर्वत्र नहीं देखो, ये तो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, प्रतिबिंब एक नहीं है। कल कोई कह दिया था प्रतिबिंब एक करे, प्रतिबिंब एक नहीं, अनेक झड़े में प्रतिबिंब एक है, प्रतिबिंब एक नहीं, प्रतिबिंब अनेक है, बिंब एक है। तो बिंब एक है, उस बिंब के साथ तादात्म्य करके बिंब को यदि मेरा स्वरूप मान लिया, हजार घड़ों में बिंब रूप चेतन एक है अनेक है, प्रतिबिंब अनेक दिखने पर भी बिंब रूप एक है, उसको जाना। इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है, सूक्ष्म विचार करने से ज्ञान होगा। ऊपर ऊपर देखेंगे तो ये सब दिखता है, चेतन कहाँ दिखता है? वे कहते इसमें चेतन कुछ चार वालों क्या कहते हैं, पांच भूत से सरल बनना, चार पांच नहीं मानते, आकाश भी नहीं मानेगी, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार मिल गया, वो है चेतन नाम का, आत्मा नाम कोई पदार्थ ही नहीं। ऐसे फल फूल पत्र सड़ा करके मद्य बना देते हैं, मदिरा शक्ति फल में नहीं है किंतु फल को सड़ा करके मद्य बना देते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु का विलक्षण संयोग हो गया, ये चेतन जैसे लगता है, कहते चेतन नाम का पदार्थ है ही नहीं। कारण क्या है? स्थूलदर्शी, स्थूल को देखने से सूक्ष्म ज्ञान नहीं होता है। मन अंदर है, इंद्रिय है, मन में शक्ति है, ये सब विचार करने से निश्चय होता है। और सूक्ष्म और सूक्ष्म, सूक्ष्म या तुच्छ, बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए और सूक्ष्मदर्शी। जो लोग सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इंद्रिय से परा करके अर्थ लेकर के सूक्ष्म पदार्थ को देखना जिनका स्वभाव है, वही देख सकते, साक्षात्कार करते हैं। बाह्य प्रपंच में भटक रहे, उसमें भटका हुआ आत्मज्ञान कहाँ होगा? उसको छोड़ करके आत्म तत्व का निरीक्षण, अंदर क्या है, मैं कौन हूं, जानने के पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा विचार करे तो पता चलता है वास्तव स्वरूप क्या, मैं कौन मैं क्या, इसको ठीक से नहीं जान करके ब्रह्मांड की खबर संग्रह करता है। ब्रह्मांड जानना चाहता है, ऊपर चंद्रमंडल को जानना चाहता है, पहले अपने स्वरूप को निश्चय कर लो, अपने स्वरूप क्या, इसको जो जानना चाहते हैं तो बुद्धि की सूक्ष्मता होती है, तभी साक्षात्कार हो सकता है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको नियमन करना पड़ेगा, बाहर से मन को हटाना पड़ेगा, उसके लिए आगे योग बताते हैं। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, विवेकी बुद्धिमान क्या करे, वाग इंद्रिय सब इंद्रिय, केवल वाग इंद्रिय नहीं, दिन भर बोलते रहे एक घंटा मुख में मौन कर दी से नहीं, सारे इंद्रिय का संयम करना है। इंद्रियों को कोई रोक करे करके कुछ कुछ बोलते रहते, ये मौन से मतलब नहीं, सब इंद्रियों का व्यापार कम करना है, नियमन करने का अर्थ मन में ही सब इंद्रिय के व्यापार को उपसारण करो। मनसी सप्तमी अंत दीर्घ सांदर्श प्रयोग है, मन में सब इंद्रिय का उपरत करो, नियमन करो। कौन करेगा? प्राज्ञ विवेकी, केवल वाघ नहीं सारे इंद्रियों को, और मन को क्या करेंगे? तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, प्रकाश रूप बुद्धि में नियमन करे मन को, मन का नियमन करे बुद्धि में, मन व्यापार छोड़कर बुद्धि का आश्रय करे, बुद्धि मन का आत्मस्वरूप है नियमन करने वाली, और बुद्धि को नियमन करना है ज्ञानम आत्मनि महति, महतात्मा हिरण्यगर्भ महतत्व, बुद्धि को कहाँ नियमन करना? समष्टि बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि को छोड़ करके समष्टि बुद्धि का चिंतन करे, व्यष्टि बुद्धि को छोड़कर समष्टि बुद्धि में नियमन करे, महतात्मा हो गया हिरण्यगर्भ, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, और तद यच्छेद शांत आत्मनि, महान आत्मा हिरण्यगर्भ को शांत अभिक्रिय, सब सारे बुद्धि को देखने वाले सर्व प्रत्यदर्शी शुद्ध आत्मा में उसको नियमन करें, मुख्य आत्मा में। पहले सारे इंद्रिय व्यापार को समाप्त करके मन में स्थिर हो जाए, मन को बुद्धि में लगाए, अर्थात बुद्धि का आश्रित हो जाए, मन अपने दौड़ता है उसको स्थिर करे, फिर बुद्धि व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि में एक हो जाए, समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ होने के बाद उसको नियमन कर दे अशांत आत्मा में। श्रुति यहां उपदेश करती सबके लिए, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत शिवस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ती। उत्तिष्ठत कहती श्रुति, जाग जाओ उठ जाओ, सब लोग समझे हम जगे उठे, श्रुति क्या कहती? जगे नहीं है, जो जगा हुआ उसको क्यों कहेंगे जागृत, उठो जाग जाओ। जाग जाओ मतलब क्या है? आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, उत्तिष्ठ उठो, उठो मतलब आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ। आत्मज्ञान के अभिमुख होने का अर्थ ईश्वर अर्पित कर्म करो, चित्त शुद्ध हो, जिज्ञासा हो, गुरु के पास जाओ, श्रवणादि प्राप्त करो, ये उत्तिष्ठत उठो। जागृत अवस्था में है, अज्ञान निद्रा है, इसका नष्ट करो, अज्ञान निद्रा का क्षय करो। जागृत का अर्थ जागृत, जागृत का अर्थ निद्रा को समाप्त करो। सोया हुआ निद्रा है कहते जागृत, पहले उत्तिष्ठत का अर्थ आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ। आत्मज्ञान अभिमुख होने के लिए ईश्वरार्पित कर्म करो, चित्त शुद्धि हो, जिज्ञासा और गुरु के पास जाओ, श्रवण करो। और जागृत का अर्थ अज्ञान निद्रा को समाप्त करो, सारे अनर्थ बुझो, अज्ञान निद्रा को समाप्त करो। कैसे समाप्त होगा? प्राप्य वरा निबोधत, प्राप्य उपगम्य, गुरु के पास जाकर के आचार्य को निबोधत, ठीक ठीक रूप से उसको जानो, तत्व ज्ञान आचार्य को प्राप्त करके निबोधत, स्वरूप का साक्षात्कार करो। यहां उपेक्षा नहीं करना है, उसकी श्रुति कृपा करे कहते माता के समान क्षीर से धारा निश्चिता दूरतया, क्षीर के धारा के समान तीक्ष्ण है, निश्चय अत्यंत तीक्ष्ण है, दूरतया दुखे नत्य मार्ग खड़ गए अत्यंत तीक्ष्ण, उसमें पैर रखें तो कट जाएगा। दुर्गम पथम कवि कांतदर्शी लोग कहते अत्यंत दुर्गम है, बहुत सावधान होकर तीक्ष्ण है, इसलिए पाद में जाना कठिन होता है, इसलिए ज्ञान लक्षण मार्ग इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है, इस मार्ग में आगे बढ़कर उसको प्राप्त करो। कोई इसको दृष्टांत देकर कहते खड़ग की धारा ज्ञान के नाम से डरा देंगे। खड़गे की धारा है अवश्य है, किन्तु सावधान होकर प्राप्त करके चलना, उसके बिना दूसरे उपाय है नहीं, प्राप्त करना चाहिए। आगे भी आत्म तत्व का कथन है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।